राजवंश फैमिली के बीच ब्रेकफास्ट टेबल पर होने वाली छोटी सी बहस बड़ी लड़ाई में बदल चुकी थी। नकुल और प्रशांत चाहते थे कि वसुधा बिना किसी भेदभाव के आयशा के नाम 2% शेयर करें। वसुधा ने शर्त रखी कि जब उसका बेटा प्रशांत अभिमन्यु की पत्नी को 2% शेयर देगा, तभी वो बराबरी करते हुए आयशा को बराबर का शेयर देगी। वसुधा भूल गई थी कि उसने अभिमन्यु की पत्नी को 5% शेयर दिए थे और शर्त के मुताबिक अब उसे आयशा को भी 5% शेयर देने पड़ेंगे। वहीं ईशिका को इंतजार था राजवंश फैमिली के मोबाइल चेक करने का, ताकि आयशा की सच्चाई उनके सामने आ जाए। अभिमन्यु को राजवंश एम्पायर की हेड पोजीशन इसी वजह से मिली थी क्योंकि वसुधा और अभिमन्यु के शेयर्स मिलाकर 51% थे। अब अगर वसुधा अपने 5% शेयर आयशा के नाम कर देती तो हेड की पोजीशन बदल जाती। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रशांत ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है अभिमन्यु, क्या बराबरी का सौदा सही रहेगा? वसुधा फंस गई थी। वो यही चाहती थी कि अभिमन्यु मना कर दे, लेकिन अगर अभिमन्यु मान जाता तो फिर यही माना जाता कि उसके मन में लालच है। वसुधा अपनी बीमारी का फायदा उठाते हुए खांसने लगी, ताकि तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वो इस बात को यहीं पर रोक दे। लेकिन तभी अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वसुधा चौंक गई थी। उन्होंने सख्ती से अभिमन्यु की तरफ देखा, जिसके चेहरे के भाव बिल्कुल सामान्य थे। अभिमन्यु ने आंखों ही आंखों में वसुधा को शांत रहने के लिए कहा और फिर प्रशांत की तरफ देखकर सख्ती से कहा, मुझे इस डील से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपको मेरी पत्नी के नाम 2% शेयर करने होंगे। अभिमन्यु उन लोगों के सामने अपनी वाइफ को मेरी पत्नी कहकर ही बुलाता था। हमेशा अभिमन्यु इमोशनलेसली मेरी पत्नी कहकर बुलाता था, लेकिन आज जब उसने मेरी पत्नी कहा तो उसकी नज़र ईशिका की तरफ गई, जो चुपचाप पेस्ट्री खाने में बिजी थी। अभिमन्यु का चेहरा उतर गया था, क्योंकि ईशिका के हाव भाव से यही लगता था कि उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने फिर से प्रशांत की तरफ देखा तो वहीं ईशिका खाते हुए रुक गई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं जब उसने अभिमन्यु के मुंह से मेरी पत्नी शब्द सुना और उसके गाल लाल होने लगे। ईशिका के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। प्रशांत ने बहाना लगाते हुए कहा, ठीक है, मैं कर दूंगा ट्रांसफ़र, लेकिन अभी पेपर तैयार नहीं है। आपको किसने कहा पेपर तैयार नहीं है? अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा और फिर तुरंत पृथ्वी के लिए मैसेज छोड़ा। 5 मिनट के अंदर ही पृथ्वी पेपर्स के साथ वहां आ चुका था। उसने पेपर प्रशांत के सामने रखते हुए कहा, आपके यहां साइन करने हैं। कहने को राजवंश एम्पायर के शेयर्स उनके घर की बहू को जाते थे, लेकिन उसका फायदा उनके पति ही उठाते थे। इस अग्रीमेंट में अभिमन्यु की पत्नी की कोई डिटेल्स नहीं थी, बल्कि वो 2% शेयर उसी के पास जा रहे थे। पेपर्स पढ़ने के बाद प्रशांत ने भौहें उठाकर कहा, अग्रीमेंट पहले का बनाया हुआ लग रहा है, मानना पड़ेगा। तुम्हारी नज़र पहले से मेरे शेयर्स पर थी। मेरी किसी की प्रॉपर्टी पर कोई नज़र नहीं है। आप ही यहाँ पर पहले शेयर्स मांगने के लिए आए थे। रही बात डॉक्यूमेंट तैयार रखने की, तो ये मैंने नहीं, दादी ने तैयार करवाए थे, अभिमन्यु ने सख्ती से जवाब दिया। प्रशांत के पास और कोई चारा नहीं था, मजबूरी में उसे साइन करने पड़े। फिर उसने वसुधा की तरफ देखकर कहा, मैंने साइन कर दिए हैं, अब आपकी बारी है। आपको 5% शेयर्स नक्श के नाम करने होंगे, पृथ्वी ने बीच में बोलते हुए कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पेपर तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको 1-2 घंटे का टाइम तो हमें देना होगा। हाँ, 1-2 घंटे इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है, है ना मिस्टर राजवंश? अभिमन्यु ने प्रशांत की तरफ देखकर पूछा। शेयर्स एक्सचेंज करने पर सबने काफी आराम से हामी भर दी थी, इसलिए उर्वशी नहीं चाहती थी कि वहाँ कोई बहस हो, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम आराम से बैठकर नाश्ता करते हैं, पुरानी बातें करेंगे, उतने में ही पेपर्स बनकर तैयार हो जाएंगे। माहौल फिर से शांत हो गया था। पेपर्स लेकर पृथ्वी वहां से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया था। उर्वशी तुरंत आयशा के पास वाली चेयर पर बैठी। उसकी वजह से आज उन्हें 5% शेयर मिले थे, इसलिए वो उसकी प्लेट में सर्व करते हुए बोली, ये लो बेटा खाओ। दादी के घर ब्रेकफास्ट करने का मौका किस्मत वालों को मिलता है, ये किसी को अपने घर नहीं आने देती है। आयशा ने उनकी बात पर हामी भरी और चुपचाप नाश्ता करने लगी। उसकी नज़र नक्श पर जमी हुई थी, जो बस ईशिका को देखे जा रहा था। आयशा से ये कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। उसने ईशिका की तरफ देखकर कहा, ईशिका, क्या यहाँ तुम ठीक से रह रही हो? ईशिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी आयशा ने आगे कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, डैड ने कहा कि जब तक तुम राजवंश फैमिली के साथ रह रही हो तो अच्छे से रहना, कुछ भी ऐसा वैसा मत कहना और सबके साथ प्यार से पेश आना। अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत महसूस हो तो तुम अपने पति के घर जा सकती हो, आखिरकार वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ईशिका समझ गई थी कि आयशा क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईशिका शांत थी। इनफैक्ट वो आज आयशा की बातों को इंजॉय कर रही थी। आयशा ने फिर से कहा, तुम्हारे पति से मुझे याद आया कि उसके पास रहने के लिए नहीं तो घर है और ना ही गाड़ी। अब तो तुम्हारे पास भी रहने के लिए जगह नहीं है। नक्श, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम्हारा जो दूसरा अपार्टमेंट है वो रहने के लिए ईशिका को दे दो? आखिर उसने दादी के लिए इतना कुछ किया है, तो एक छोटा सा अपार्टमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयशा ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो उस घर की मालकिन हो। उसकी बातों से चिढ़ते हुए ईशिका ने तेज आवाज में कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि दादी की जान की कीमत सिर्फ एक अपार्टमेंट जितनी है? नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, आयशा ने सफाई देते हुए कहा। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम इस घर की बहू बन जाओगी तब इस तरह फ्री में अपार्टमेंट बांटना, अभी तुम्हारे पास खुद का कुछ नहीं है, ईशिका ने सिर हिलाकर कहा। इशिका आयशा की इंसल्ट कर रही थी और ये उर्वशी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इशिका से बोली, मिस सिंघानिया, मुझे बार बार तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी क्या? आयशा इस घर की होने वाली बहू है, उसे शेयर्स मिलने वाले हैं, जल्द ही वो और नक शादी कर लेंगे, तो इस हिसाब से वो तुम्हें तो एक अपार्टमेंट देने की हैसियत रखती ही है। उर्वशी का साथ देते हुए नक्श ने कहा, और तुम इस तरह मेरी पत्नी की इंसल्ट नहीं कर सकती हो। बड़ी दादी ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कह दो। इसकी इंसल्ट करना मेरी इंसल्ट करने बराबर है, तो चुपचाप सॉरी कहो। इशिका नक्श को जवाब देने वाली थी, तभी बीच में अभिमन्यु ने बोलते हुए कहा, और तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि इस घर के गेस्ट के साथ कैसे बात करनी है? मैं बार बार नहीं कहूंगा, मिस सिंघानिया मेरी गेस्ट है और किसी को भी उसकी इंसल्ट करने का हक नहीं है। नक्श को मजबूरन चुप रहना पड़ा, पर उर्वशी कहां चुप होने वाली थी। उसने फिर से कहा, तुम जानते हो ना आयशा कौन है, अब तो पूरा शहर उसकी इज्जत करता है। तुम्हें कल की आई लड़की के लिए उसकी इंसल्ट करोगे अभिमन्यु? आप इस बात को लेकर श्योर है कि पूरा शहर उसकी इज्जत कर रहा है? अभिमन्यु ने भौहें उठाकर पूछा। उसकी बातें सुनकर उर्वशी चौंक गई। तभी अभिमन्यु ने सिर हिलाकर अपना फोन आगे रखते हुए कहा, कुछ भी कहने से पहले एक बार ट्विटर चेक कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं कि आपकी ये होने वाली बहू कितनी अच्छी और इज्जत वाली है। अभिमन्यु की बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। ट्विटर पर क्या चल रहा था उस अनजान उर्वशी ने कहा, हाँ तो इसमें गलत ही क्या है, ट्विटर पर सब जगह आयशा की तारीफ चल रही है, उसने इतना अच्छा काम किया है तो वो ये सब डिजर्व करती है। उर्वशी ने ही अपने पीआर डिपार्टमेंट को इसके पैसे दिए थे मामले को बढ़ाने के लिए।
अभिमन्यु ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि ये सब चीजें आपके लिए तारीफ है, फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या सच में वो तारीफ ही है ना। अभिमन्यु की बातों से उर्वशी घबरा गई थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और ट्विटर के ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करने लगी, तो वही नक्श के पास कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट से कॉल आया। कॉल पर बात करने के बाद नक्श के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने जल्दी से ट्विटर चेक किया, ऐसे लग रहा था जो भी हो रहा था उसे पर उस यकीन नहीं हो रहा था। आयशा अभी भी उन सबसे बेखबर थी। उसने नक्श के पास जाकर पूछा, क्या हुआ नक्श, सब ठीक है ना? वहीं ट्विटर पर सब चेक करने के बाद उर्वशी के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। वो उठकर आयशा के पास गई और उसे दोनों कंधों से पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहूंगी जो यहाँ बैठकर हम सबके साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। उर्वशी ने गुस्से में खाने की प्लेट उठाकर फेंक दी थी, जो कि आयशा के पैरों में जाकर लगी। उसने कुछ ही देर में आयशा का हाल बेहाल कर दिया था। अभिमन्यु चुपचाप हाथ बांधे हुए इस तमाशे को देख रहा था। आंटी प्लीज मुझे बताइए, आखिर हुआ क्या है, मैंने क्या कर दिया जो अचानक से आप इतना गुस्सा हो गई? आयशा ने रोते हुए पूछा। मेरी कुछ बताने की हिम्मत नहीं है, ऐसा करो तुम ट्विटर चेक करो, उर्वशी ने गहरी सांस लेकर कहा। उससे उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था कि अभी वो आयशा की जान ले ले। इशिका ने ट्विटर खोला तो उसे पता चला मिस एम के अकाउंट से प्रिंस के वीडियो को रीट्वीट किया गया था, जिसके बाद वो जल्द ही वायरल हो गया था। उसने पुलिस में ये साबित कर दिया था कि उसी ने माहिर के खिलाफ पुलिस को चुपके से सबूत भेजे थे। सब कुछ साबित हो जाने के बाद पुलिस ने आयशा के बचाए प्रिंस को प्राइज देने का फैसला किया था। उन्होंने इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल तक में डाल रखा था। आयशा के खिलाफ काफी कुछ वायरल हो रहा था, लोग उसे बहुत भला बुरा कह रहे थे। पिछली बार जब आयशा ने इशिका का क्रेडिट अपने नाम लिया था तब कुछ ही लोगों को पता था, लेकिन फिलहाल बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। सारा शहर तक इसके बारे में जान चुका था। आयशा के पैर मानो वहीं पर जम रहे हों। तभी पृथ्वी मौके का फायदा उठाते हुए कुछ पेपर्स के साथ वहां आया और बोला, सर मैंने पेपर्स बनवा लिए हैं, इनके साइन हो जाने के बाद उन्हें पब्लिक भी करना है। अभिमन्यु ने सख्त शब्दों में कहा, रहने दो पृथ्वी, अब उसकी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब राजवंश फैमिली एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहेगा। अरे ये लड़की इस घर के आसपास भी रही तो सब राजवंश फैमिली का मजाक बनाएंगे, बिजनेस को बहुत नुकसान होगा और स्टॉक भी गिर जाएंगे। इस कंपनी का हेड होने के नाते मैं यही डिसीजन लेना चाहूंगा कि अगर नक्श इससे शादी करे तो उसके बारे में पब्लिक में रिवील नहीं किया जाए। अभिमन्यु ने जानबूझकर वही बातें कही जो कभी उन्होंने इशिका के बारे में बोली थी। उनके पास 5% शेयर नहीं आ रहे थे, ये सुनते ही तो उर्वशी गुस्से से पागल हो गई। उसने आयशा की गर्दन पकड़ी और चिल्लाकर बोली, बाहर निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना, और भूल जाओ कि नक्श और तुम्हारी शादी कभी हो सकती है। प्लीज मेरी बात, आयशा ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन तभी उर्वशी बीच में चिल्लाकर बोली, मैं बहुत तरीके से पेश आई हूँ, अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालूं, खुद ही चली जाओ। आयशा डर से कांप रही थी। उसने नक्श की तरफ देखा जो उसकी तरफ नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। आयशा समझ गई थी कि नक्श भी इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं करने वाला। आयशा रोते हुए वहां से चली गई। वहां डाइनिंग रूम में ऐसे सन्नाटा छा गया जैसे किसी की मौत हुई हो। उनके जाते ही पृथ्वी ने अभिमन्यु से कहा, सर क्या अभी भी इन पेपर्स पर दादी के साइन होंगे? पृथ्वी की बातें प्रशांत और नकुल को चिढ़ा रही थी। आज उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कहां वो वसुधा से 5% शेयर हासिल करना चाहते थे और कहां उन्हें 2% और का नुकसान हो गया।
नक्श इस वक्त इतना गुस्से में था कि वो तेज सांसें ले रहा था। उसने एक नज़र उन सब की तरफ देखा और बाहर चला गया। उनके पीछे पीछे नकुल और प्रशांत भी गए। अब उर्वशी का वहां रुकना बेकार था तो वो भी जा चुकी थी। फाइनली उसे डाइनिंग हॉल में वही शांति थी जो सुबह अभिमन्यु, इशिका और वसुधा के होने से रहती थी। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा तो उस पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो आंखों ही आंखों में अभिमन्यु को थैंक्स बोल रही थी, तो वही अभिमन्यु भी अब बेफिक्र था। आयशा का राजवंश फैमिली से पत्ता साफ हो चुका था, लेकिन इतनी आसानी से वो इशिका की जिंदगी से जाने वाली नहीं थी। इशिका ने अपने मन में कहा, मुझे जल्द से जल्द आयशा के बारे में कुछ सोचना होगा। वो इस मामले में शांत नहीं रहने वाली है और राजवंश फैमिली का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। अभिमन्यु ने इशिका के चेहरे की तरफ देखा। वो समझ चुका था कि इशिका क्या सोच रही है। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, मिस सिन्हानिया, किसी की भी लाइफ सिंपल नहीं होती है, तो आपकी जिंदगी भी हमेशा सिंपल नहीं रहने वाली है। फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसे एंजॉय कीजिए। चलिए आइए अब आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और ब्रेकफास्ट टेबल पर वापस आ गई थी। वही अभिमन्यु ने पृथ्वी की तरफ सबकी नजरों से छुपकर इशारा किया। पृथ्वी समझ गया था कि अब उसे आगे क्या करना है।